ओम शांति। आज हम सभी के समक्ष आदरणीय श्रद्धेय सोमप्रभाबेन जी उपस्थित है। सबसे पहले हम उनका करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बाबा के ऐसे ऐसे लाल या रतन हैं जो भारत के कोने कोने में छिपे हुए हैं, और जब मधुबन में मिलते हैं तभी वो रतन सामने आते हैं। उसमें से ही एक सोमप्रभा दीदी जी है जिनको 40 साल पहले मैसूर से ज्ञान मिला था और वर्तमान समय सोलापुर क्षेत्र संभालते हैं। इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी अपना पुरुषार्थ अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं बहुत ऊंची तरह से, और आज हम सभी के समक्ष इसी विषय को लेकर आए हैं। हम सभी ने 3 अवतरण में देखा बाप दादा का पार्ट चेंज होता जा रहा है, तो वर्तमान समय बाप दादा का पार्ट जो चेंज होता जा रहा है उसके अनुसार हमें भी किस तरह से पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की विधि क्या है, इस विषय को लेकर हम सभी के समक्ष सोमप्रभा बहन जी पधारे हैं, तो हम सभी उनसे लाभान्वित होंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी का आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति ही। ये जो विशेष महामंत्र हमें हमारे प्यारे प्यारे बाबा ने दिया है, तो ये मंत्र हमें भी बहुत मन लुभाता है, और दुनिया वाले लौकिक वालों को भी ये बहुत प्यारा मंत्र लगता है। इसलिए कोई कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम अथवा ईश्वरी विश्वविद्यालय कहने के बदले ओम शांति आश्रम अथवा ओम शांति सेंटर पर जाना है अथवा यहाँ पर है, इस प्रकार से ओम शांति शब्द से जानते हैं और खुद भी चाहते हैं ओम शांति स्थिति में रहने से शांति प्राप्त होती है। तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कि वर्तमान समय पर हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का पार्ट किस प्रकार से बदलता जा रहा है, ये मालूम होते हुए भी हम सभी प्यारे प्यारे बाप दादा के लाडले बच्चे पहुंच गए हैं और भी 30-31 तारीख तक पहुंचने वाले भी है। हमें पता है पार्ट बदलता जा रहा है, बाप दादा से पहले जैसा ज्यादा हम मुलाकात नहीं ले पा रहे हैं, परंतु ठंडी भी बहुत है। दिसंबर मास में यहाँ पर ठंडी भी बहुत रहती है, सब मालूम होते हुए भी हम लोग सभी पहुंच गए हैं, और साथ साथ आगे भी लगभग 23-24 हजार तक भाई बहने टोटल हम और उनको मिला करके पहुंचने वाले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में फिर भी हम बाबा के घर में, इस बेहद घर में पहुंचे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या है? हमारा मुख्य दो उद्देश्य है। एक है हम बाबा के बेहद घर में पहुंचकर अपने आप को रिफ्रेश कराकर तीव्र पुरुषार्थ में कैसे और आगे बढ़े वो हम यहां पर प्राप्त करने हेतु हर साल के बाप दादा के मिलन के सीजन में एक टर्न में भी क्यों नहीं हो जरूर पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे अत्यंत प्यारे मीठे बाप दादा का मिलन जरूर हमें होगा ही, ये लक्ष्य रख करके हम पहुंचे हुए हैं। होगा ही ना, बाप दादा का मिलन होगा जरूर। हम सब का इतने हजारों संख्या में पहुंचे हुए भाई बहनों का योग बल है, ये जरूर कार्य करेगा। भले पहले हम किस प्रकार से बाप दादा से रात भर मिलन मुलाकात करते थे, फिर धीरे धीरे कम से कम 6-7 घंटे के लिए मिलन मुलाकात करते थे, फिर उसके बाद केवल 2-3 घंटे तक मिलन मुलाकात करने का पार्ट शुरू हो गया था, फिर वर्तमान समय पर हम और आप सभी अनुभव कर ही रहे हैं किस प्रकार से बाप दादा का पार्ट धीरे धीरे बच्चों से मिलने का, भले स्थूल रूप से समय के अनुसार कम होता जा रहा है, परंतु सूक्ष्म रूप से बाप दादा तो हमारे साथ साथ ही है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि जैसे बाप दादा हमको बहुत समय से इशारा देते आ रहे हैं कि बच्चे अचानक ये पार्ट भी बदलता जाएगा, तो आगे चलकर के आप बच्चों को स्वयं अपने पांव पर खड़े होकर पुरुषार्थ करते हुए बाप दादा की प्रत्यक्षता करनी पड़ेगी। हमारे द्वारा भले अभी तक हम सभी बाप दादा से लगभग, मैं समझती हूँ 44 ईयर से, 44 ईयर से हम लोग बाप दादा के द्वारा मिलन मुलाकात करते हुए उनके महावाक्यों से हम बहुत श्रृंगार होते आ रहे हैं, फिर भी बाबा को पता चल रहा है कि बच्चे केवल बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं, मिलते हैं और बाप दादा से महावाक्य सुनकर उस अनुसार प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बनाने का लक्ष्य रखकर अथवा प्रतिज्ञा करके जाते हैं, परंतु वापस जब हम अपने स्थान पर जाते हैं तो क्या हो जाता है? मैं सबकी बात नहीं कहती हूँ, बाबा के ऐसे भी कई लाडले अच्छे बच्चे भी है, जो बाप दादा हम बच्चों को जिस प्रकार से जिस समय पर जो पुरुषार्थ हमें आवश्यक है उस अनुसार महावाक्य सुनाते हैं, तो उस महावाक्य के अनुसार अपने आप को चलाने का भी पुरुषार्थ करते हैं, उसमें लगे हुए भी बच्चे हैं। फिर भी बहुत करके जैसे बाबा साकार मुरली में भी बताते रहते हैं, आज भी सुनाए और हर टाइम ये हमको सावधानी देते रहते हैं कि बच्चे जितना आप रुस्तुम से रुस्तुम बनते जाते हो, माना पुरुषार्थ में जितना आप महावीर महारथी बनते जाते हो, उतना ही माया रावण भी रुस्तुम से रुस्तुम बनकर हमारे सामने आते हैं। तो उसके लिए बाबा से शक्ति प्राप्त करना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम सब शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी जानते हैं, परंतु फिर भी कई बार वो शक्ति प्राप्त करने के समय पर तो मिस करके हम माया के वशीभूत भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको आज ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बाप दादा का पार्ट जिस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है, उसको हम कैसे निवारण करें। तो इसके संबंध में मैंने हमारे आदरणीय जानकी दादी जी से प्रश्न पूछा, दादी ऐसे जो बाप दादा का पार्ट चल रहा है तो हम क्या करें, हम कैसे आगे से पुरुषार्थ करें। तो दादी जी ने बताया, उसमें मुख्य दो बातें उन्होंने हमारे ध्यान पर दिए। एक तो हमें अभी जैसे बाप दादा हमको अपने महावाक्यों से अपनी दृष्टि से और अपने चेहरे से कैसे रिफ्रेश कराते आए, उसी प्रकार से अभी हम बच्चों का कर्तव्य है हमको अपने चेहरे से बाप दादा को प्रत्यक्ष कराने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि एक बाप दादा के द्वारा हम इतने सभी रिफ्रेश हो रहे थे, खुश हो रहे थे, अपने जीवन को परिवर्तन करते आ रहे थे। तो सोचिए, हम सब बाबा के बच्चे यदि बाप दादा के महावाक्यों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में धारण करके यदि हम इतने सभी मास्टर बाप दादा जैसे मास्टर ब्रह्मा है और मास्टर मम्मा है, इस प्रकार से हम मास्टर बाप दादा बनकर हम सबको अपने चेहरे के द्वारा, चलन के द्वारा, वाणी के द्वारा आत्माओं को, चाहे अभी अभी आने वाले सेवा केंद्र पर नई नई आत्माएं होती है तो उनको कई बातें, ज्ञान की कई बातें इतना मालूम नहीं रहती है, तो ऐसे आत्माओं को हम पहले इस प्रकार का अनुभव कराए कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में सचमुच ईश्वरीय शक्ति है ही, ईश्वरीय शक्ति छिपी हुई है, वो हम अभी प्रत्यक्ष रूप में इनके द्वारा देख रहे हैं। वो अनुभव हम बाबा के बच्चे इतने सभी अपने अपने स्थान पर कराएंगे तो फिर इस धरा पर जो हम दुनिया के सामने चैलेंज कर रहे हैं, बहुत घोषणा करते हुए सबको सुना रहे हैं कि थोड़ी समय में इस धरा पर अथवा इस भारत भूमि में स्वर्ग आने वाला है, भले ये कलयुग का विनाश होगा वो अलग बात है, परंतु हमें सदैव शुभ संकल्प रखते हुए शुभ वाणी के द्वारा, शुभ कामनाओं के द्वारा, शुभ विचार जैसे हम सबको बता रहे हैं वैसे वही कार्य करके दिखावे। तो आज भी हम साकार मुरली में वरदान भी क्या सुने थे सबको याद होगा, हमारे चेहरे रूपी दर्पण के द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। तो जितना हम बाबा की याद में योग की स्थिति में आगे बढ़ते जाते हैं, भले योग तो रोज करते हैं वो अलग बात है, परंतु योग में हमारी स्थिति कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, उस बात का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम योग की स्थिति को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं तभी हमारे अंदर आत्मा में शक्तियां भरती जाती है। जितना हम आत्मा में शक्तियां भरते जाते हैं उतने ही हम दुनिया के सामने अथवा अपने दैवी परिवार के नई नई आत्माओं के सामने बाप दादा की प्रत्यक्षता हम करा सकते हैं। तो साक्षात्कार माना कोई देवी देवताएं ऊपर से कोई नीचे आते हैं अथवा कोई परियां ऊपर से नीचे आते हैं वो बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल में जो संगम युग का अभी का जो यादगार है कि हम जो बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को परिपूर्ण बनाकर जब दुनिया के सामने अथवा ऐसे देवी परिवार के नई नई आत्माओं के सामने जाते हैं तो उनको सचमुच उस प्रकार का अनुभव हो, यानी हमारे द्वारा उन आत्माओं को साक्षात्कार हो। जैसे शुरू शुरू में ओम मंडली का हम जो स्त्री सुनते हैं तो जब ओम मंडली में आने से पहले ही अपने अपने घरों में बैठे बैठे भी ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार कर लेते थे तो तुरंत बाप ब्रह्मा बाबा जैसे श्री कृष्ण बन गए अथवा चतुर्भुज विष्णु बन गए, इस प्रकार का साक्षात्कार कर लेते थे। फिर स्वर्ग का साक्षात्कार कर लेते, गोप गोपियों का अनुभव कर लेते, तो वो साक्षात्कार के कारण से दौड़ दौड़ कर फिर ओम मंडली में आ जाते थे तो वहां पर भी उस प्रकार का अनुभव करते थे। तो बाबा ने ये भी हमको इशारा दिए हैं कि बच्चे जो शुरू शुरू में पार्ट जैसे बजाए थे बच्चे वैसे अंतिम समय पर भी आप बच्चों के द्वारा भी उस प्रकार का साक्षात्कार होगा। ऐसे पार्ट अभी हमको बजाना है तो उसके लिए केवल बजाना बोले तो हमको हम ऐसे बजा नहीं सकेंगे, उस प्रकार की स्थिति हमें पहले बनाना होगा। तो ऐसे स्थिति जो हमारे सामने बना के गए हुए जो हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी का यादगार है और साथ साथ हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का यादगार है जो हम और भी अन्य दादियां दादे वगैरह होकर के गए हैं जो विशेष पुरुषार्थ करके हमारे सामने अपने जीवन को एक आदर्श दिखा करके अभी भी अव्यक्त रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे कई महान आत्माएं हमारे मध्य में अभी भी है, भले प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो अपरोक्ष रूप में क्यों नहीं हो, अभी भी हमें उनके द्वारा कई प्रेरणाएं मिलती रहती है। तो जैसे हम इसलिए खास हम क्या करते हैं, तो मधुबन इधर शांतिवन में आते हैं, तो केवल शांतिवन में ही इधर सारा रह करके बाप दादा से मिलन मना करके अथवा सेवा करके अथवा हम रिफ्रेश होकर के वापस अपने स्थान पर जाने नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं सभी को पता है, क्या चाहते हैं हम, भले यहाँ पर हम क्लासेस सुनते हैं, योग करते हैं, सब प्रकार का यहाँ भी कई बातों का हम अनुभव करते हैं दादी दीदियों के द्वारा भी, फिर भी हम क्या चाहते हैं, मधुबन पांडव भवन में, भले पीस पार्क में नहीं जाए कोई बात नहीं, अथवा ज्ञान सरोवर में नहीं जाए, पांडव भवन में जरूर जाने चाहते या नहीं जाने चाहते, चाहते हैं या नहीं जाने चाहते, भले कितना भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे हम दो तीन दिन के लिए क्यों नहीं आए हो, तो भी हम जो हमारा मूल स्थान बाप दादा का पांडव भवन है वहां पर जरूर जाने चाहते हैं, और उसमें भी चार धाम की यात्रा वहां पर जरूर करनी चाहते हैं। तो चार धाम तो है ही, बाप दादा का कमरा भी है, स्त्री हॉल भी है, बाबा की जो झोपड़ी भी है, फिर भी उसके साथ साथ जो शांति स्तंभ है, तो शांति स्तंभ जो ब्रह्मा बाप के यादगार है, तो उसके द्वारा हमें सचमुच बहुत से प्रेरणाएं मिलती है। तो उसमें मुख्य रूप से भले हम कहते हैं शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस कहते हैं, परंतु केवल शांति ही नहीं, उसके साथ साथ और भी तीन बातें वहां लिखी हुई आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, और भी कौन कौन सी बात है, टावर ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता स्तंभ, टावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान स्तंभ, टावर ऑफ माइट, शक्ति स्तंभ, इस प्रकार से हम चारों बातों को देखते हुए पढ़ते हुए और पूरा चक्कर लगाते हुए शांति स्तंभ का हम अनुभव करके आते हैं। तो वास्तव में ये सब बातें पिताश्री ब्रह्मा जी के द्वारा हम अनुभव करते थे। जब बाबा साकार में थे उस समय पर अनुभव करते थे, ऐसी बात नहीं है, अभी भी अपरोक्ष रूप से, अव्यक्त रूप से हम पिताश्री ब्रह्मा जी का अनुभव करते हैं, और साथ साथ उनके जो टावर ऑफ पीस का जो स्थान है वहां से जो प्रेरणा लेकर के आते हैं, तो वो अनुभव बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर जाते ही मन शांत हो जाता है, जैसे संगमरमर शीतल करता है अपने तन को, उसी प्रकार से बाबा की शांति स्तंभ के सामने जाते ही हमारे मन को भी बहुत शीतल कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है, बहुत आनंदमय जीवन का अनुभव होता है। ये मेरा अनुभव है, शायद आप लोगों को भी उस प्रकार का अनुभव होता होगा, होता है या नहीं होता है, इससे भी ज्यादा होता होगा, और भी कई प्रकार के अनुभव। तो ऐसे हमको भी अपने आत्मा में शक्ति भरकर अब अपने अंदर शांति का अनुभव करते हुए ज्ञान के पुंज बनकर हम सदैव पवित्रता की किरणें चारों ओर सर्व आत्माओं को फैलाने का पुरुषार्थ करना है। ये वर्तमान समय पर हमारे लिए बाप दादा का इशारा है। केवल हम बाप दादा से मिलन नहीं मनाना है, अथवा केवल ब्रह्मा बाप की महिमा ही नहीं करनी है। जैसे आज मम्मा के बारे में भी हम साकार मुरली में सुन रहे थे, बाबा जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती वही कैसे लक्ष्मी बनने वाली है, तो उनकी कितनी अच्छी तरह से मुरली के द्वारा बाबा महिमा करके सुना रहे थे। तो ये एक एक सैंपल एग्जाम्पल हमारे सामने है, परंतु हमको केवल उनको देखना ही नहीं है, उनके द्वारा प्रेरणा लेकर हमें भी उनके जैसे शक्ति स्वरूपा बननी है। भले हम सब भाई हैं अथवा बहने हैं, हम सब आत्माएं हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, और हम सब आत्माएं शिव शक्तियां पार्वतियां हैं। तो हमें आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर मम्मा बाबा की तरह हमको अपने जीवन को ऊंच बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो ये वर्तमान समय पर हम बाप दादा के द्वारा जो पार्ट चल रहा है उससे हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी आदरणीय जानकी दादी जी ने ये भी बात कही, दूसरी बात कि हमको अपने नेचर को बदलने के लिए बाबा इशारा दे रहा है। तो हम अपने नेचर को, जो भी कुछ पहले का पूर्व नेचर है, पहले का स्वभाव संस्कार है, जैसे ज्ञान में आने से पहले होंगे अथवा ज्ञान में आने के बाद भी, जैसे आज बाबा के महावाक्य में सुन रहे थे, संघ का रंग भी लग जाता है, तो ऐसे कोई ना कोई बुरे नेचर बन गया होगा, परंतु उस नेचर को भी हमें बदलना है, उसके लिए हमारे अंदर से बदलना जरूरी है, तभी वो चेहरे में आएगा। तो वरदान में जो सुन रहे थे, उसका अंग्रेजी में कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो हमारे चेहरा क्या है? मन का दर्पण है। मन में जिस प्रकार से संकल्प चलते हैं उस अनुसार ही चेहरे के द्वारा दिखाई देता है। वो भी आज बाबा ने इशारा दिया है, बताया कि चेहरा कैसे होना चाहिए, खुश नमहा होनी चाहिए। परंतु कई बच्चों का चेहरा कैसे होता है, खुश्क नमहा हो जाता है। तो बाबा ने यही बताया कि खुश्क चेहरा नहीं हो तो खुश नमहा चेहरा हो, खुशी खुशी से हम जो भी समस्याएं आती है, हमें ये पता है ये कलयुगी दुनिया है, भले हम हैं संगम युग में, फिर भी सत्युग तो पूरा अभी आया नहीं है, तो सत्युग की ओर हम जा रहे हैं, तो कलयुग का प्रभाव भी संगम युग पर पड़ता रहता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इशारा देते रहते हैं कि जो भी कुछ कलयुग के प्रभाव का हमारे ऊपर नेचर स्वभाव पड़ जाता है, उसको हमें बदलना है। केवल बाप दादा हम बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो बाप दादा का नेचर कितना अच्छा है, तो बाबा कोई भी आत्मा बाप दादा के सामने आए तो कभी भी बाबा को उनकी स्त्री मालूम होते हुए भी, उनका स्वभाव संस्कार मालूम होते हुए भी, वो कैसी आत्मा है जानते हुए भी, बाबा कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरा कड़वा बच्चा है। बताया है कभी, चाहे साकार मुरली में हो अथवा बाप दादा के महावाक्यों में हो, नहीं, सदैव बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा भी बाप दादा भी जब भी सामने हम जाते हैं, बस मेरे प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, आप लोग तो बहुत ऊंचे हो, महान हो, बाबा से भी ऊंच हो, यहाँ तक भी बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा तो है ही निरहंकारी। बाबा कितने निरहंकारी है, सदैव हमको हर दिन नमस्ते करते रहते हैं, है ना। इसीलिए हम बच्चे भी क्या करते हैं, बाप दादा को रोज नमस्ते करते हैं, करते हैं ना या नहीं करते हैं, सुबह उठ करके अमृत वेले गुड मॉर्निंग तो जरूर करते हैं, करते हैं सभी अमृत वेले उठते हैं, उठते हैं सभी अमृत वेले, अथवा बहुत ठंडी लग रही है, सर्दी का मौसम है तो कैसे उठे, तो चादरे अथवा क्या रजाई ओढ़ ओढ़ करके सोते सोते हम बाबा को याद कर लेंगे, क्योंकि बाबा को पता है ना कि सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत लग रही है, बाबा जानते हैं, बाबा की तो बच्चे हैं हम, तो ऐसे तो नहीं करते हैं, भले बाबा जानते हैं, बाबा बच्चों को प्यार करते भी हैं, फिर भी बाबा आज भी बताए जो पूरा पूरा बाबा की श्रीमत पर बच्चे चलते हैं, वही माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वही भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा की श्रीमत माना कहाँ से शुरू होता है, अमृत वेले से लेकर के शुरू होता है, इसलिए कभी भी अमृत वेले के समय पर आलस्य नहीं करना। क्या करेंगे आज से लेकर के, भले आप लोग सभी कोई नहीं किए होंगे वो अलग बात है, फिर भी यदि कोई कारण से आज किसी किसी में आलस्य आ गया होगा, अलबेलापन आ गया होगा, तो क्या करेंगे, अभी आज इस क्लास के बाद जब योग में बैठेंगे दो तीन मिनट, तो ये जरूर प्रतिज्ञा करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मेरे प्यारे बाबा, बोलिए बोलिए, मेरे प्यारे बाबा, मैं कल सुबह अमृत वेले जरूर उठकर आपकी याद करूंगी अथवा करूंगा। तो ये हम योग के समय पर अभी मुख से जैसे बोले वैसे मनी मन में पक्का निश्चय करके प्रतिज्ञा करके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रतिज्ञा वो निश्चय हमको जगा देता है। अब देखना चाहे तो कल टेस्ट करके परीक्षा करके, तो ये अमृत वेले का योग जो है यही हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली है, क्योंकि हम दूसरों को कहते हैं जब इमारत 10 मंजिल का या 50 मंजिल का 100 मंजिल का इमारत बांधना हो तो क्या करना पड़ता है, फाउंडेशन मजबूत करना पड़ता है। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना ही हम ऊंचे मंजिल बांध सकते हैं, नहीं है तो फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बांध भी नहीं सकते। यदि कॉर्पोरेशन से म्युनिसिपैलिटी से परमिशन भी नहीं मिलता, यदि मिला आप नहीं भी मिला आपने बांध लिया तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो क्रैक पड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए ये सदैव हम ध्यान पर रखें कि सुबह अमृत वेले का योग माना हमारे सारे दिन के जो पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। तो सारे दिन के जो हमारा पुरुषार्थ होगा वो भी बहुत अच्छी तरह से होगा। जिस लक्ष्य रखकर के हम पुरुषार्थ करने चाहते हैं अथवा जो लक्ष्य रखकर के हम यहाँ पर आए हैं तो वो लक्ष्य को हम पूरी तरह से संपन्न कर सकेंगे। इसीलिए अमृत वेले का योग हम कभी भी मिस नहीं करें। और पढ़ाई के ऊपर भी आज बाबा ने ध्यान दिया है ना, पढ़ाई भी कभी हमको मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य हमें एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये भी हमको ध्यान पर रखना है, तबीयत ठीक नहीं है अथवा कोई भी ऐसे परिस्थिति है इसलिए हमको अपने कमरे में से यहाँ पर हाल में आना नहीं हुआ अथवा बाबा के कमरे तक आकर के योग करना नहीं हुआ, तो बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं, कोई भी ऐसे समय पर होता है, सदैव नहीं हो सकता। यदि उसकी आदत हमने डाल दिया तो फिर वही कंटिन्यू हो जाता है, फिर दूसरे दिन भी उसी प्रकार से हमारा जीवन बन जाता है, वैसे ही मन चाहता है तो वैसे ही हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता है। इसीलिए बाप दादा हमें ये इशारा दे रहे हैं कि अभी आप बच्चों को स्वयं अपने स्वभाव को, संस्कार को परिवर्तन करके जो भी कुछ अभी तक लौकिक के बुरे संस्कार होंगे, अशुद्ध संस्कार स्वभाव होंगे, जो भी व्यर्थ होंगे उनको बदल करके हमें क्या करना है, अपने संस्कार स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंच बनाना है। तो वही आज भी हम लोगों ने स्लोगन में क्या देखा था, क्या सुने थे, हमारा सरल स्वभाव, सरल बोल और सरलता संपन्न कर्मों के द्वारा ही क्या बाप दादा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अपने स्वभाव को सरल बनाएं। जब हमारा स्वभाव नेचर सरल हो जाएगा तो हमारा संस्कार भी बदलता जाएगा, यानी संस्कार भी सरल होता जाएगा। जब स्वभाव और संस्कार सरल होते जाएंगे तो अपने बोल वाणी भी सरल होते जाएंगे, यानी सिंपल होते जाएंगे, सरल स्वभाव के होने के कारण मधुरता आ जाएगी हमारी वाणी में, नम्रता आ जाएगी। इसीलिए आप लोग दादी जी के प्रकाश स्तंभ पर भी जाते हैं ना रोज, बाबा के कमरे में तो जाते ही हैं, और हमारे आदरणीय दादी जी प्रकाशमणि दादी जी के प्रकाश स्तंभ पर भी आप जाते हैं तो वहां पर आप सभी प्रकाश लेकर के, प्रेरणा लेकर के जरूर अपने जीवन को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखकर लेकर के आते होंगे। तो हम लोग शांतिवन का भी सब चक्कर लगाते हैं तो प्रकाश स्तंभ पर भी जरूर जाते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने भी उस प्रकार से जीवन को बना करके अपने सामने एक आदर्श बन करके गए हैं। अभी भी अव्यक्त रूप से हम सबको अपनी शक्तियों के द्वारा, सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा और अपने गुणों के द्वारा, अपने जो भी कुछ पुरुषार्थ थे उसके आधार से दादी जी जो कुछ प्राप्त करके गई हैं, तो उन सब प्रकार के संस्कार स्वभाव के द्वारा हम सब को अभी भी वहां पर प्रकाश फैलाती रहती है। ये मैं जब प्रकाश स्तंभ के पास जाती हूँ तो ये मैं अनुभव करती हूँ। वास्तव में शक्तियां हम किस प्रकार से प्राप्त करें, भले हम लोग अष्ट शक्तियों की बातें हम दूसरों को सुनाते हैं, परंतु वो तो अष्ट शक्तियां जो हम कैलेंडर से अथवा अपने चित्रों के द्वारा अथवा कई बातों से ज्ञान के द्वारा कोर्स के द्वारा सुना लेते हैं, तो वो दूसरों के लिए सुना देते हैं, तो वो तो हो गया हमारे व्यवहार के लिए शक्तियां। परंतु स्वयं अपने अंदर भी हम कुछ विशेष शक्तियां अपनाने से ही हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करा सकेंगे। तो उसके लिए हमारी वाणी भी परिवर्तित हो और साथ साथ हमारे कर्म भी सरल हो, यानी हमारे अंदर नम्रता भाव हो। इसलिए आप सभी देखे होंगे प्रकाश स्तंभ में भी लिखा हुआ है, सदैव कैसे रहो, सदा निमित्त और निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी रखनी है। ये हमारे विशेष दादी जी के महावाक्य थे। दादी जी सदैव कहती थी निमित्त और निर्माण रहो, तो सदैव नम्रचित्त होकर के चलो। और स्वयं दादी को भी आप देखे होंगे, कई उन्हें देखा होगा, कौन कौन देखे हैं हमारे आदरणीय दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी को देखिए, कौन कौन देखे, थोड़ा हाथ उठाइए, कौन कौन दादी जी को देखे हैं। अच्छा, कई नए नए भाई बहने, दादी जी अब जब अव्यक्त हो गई उसके बाद जो ज्ञान में आए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, फिर भी आजकल तो कई ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो उसके द्वारा भी दादी जी को देखते हुए, दादी जी के प्रेरणा माना उनके महावाक्यों को सुनते हुए हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जीवन कहानी की भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो भी देख करके हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो वैसे हमारे मध्य में इस प्रकार से कई ऐसे महान महान विभूतियां, जैसे बाप दादा हमारे से चाहते हैं, वैसे पहले ही हमारे से पहले ही सब कुछ जानकर समझकर उस प्रकार से पुरुषार्थ करके आदर्श बनके हम सबके सम्मुख साक्षात्कार मूर्त बन करके गए। हम केवल वर्तमान समय पर बाप दादा से ये प्रेरणा नहीं लेते हैं, हमारे दादियों से, दीदियों से, अन्य जो बड़े महारथी दादाएं होकर के हैं गए हैं, अभी वर्तमान समय पर भी पुरुषार्थी है, उन सब से हम प्रेरणा लेते हैं। तो बाप दादा का यही हमारे लिए इशारा है कि आप बच्चे भी अभी जैसे महान आत्माएं मेरे महावाक्यों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ उच्च उत्तम बना करके गए हैं, उनके द्वारा केवल हम आत्माओं को ही नहीं, तो आप लोग भी अनुभव करते होंगे, मैं भी अनुभव करती हूँ कि उन आत्माओं के द्वारा सारे विश्व के सभी आत्माओं को पूरा प्रेरणा मिल रही है। सारे वायुमंडल भी बदलता जा रहा है, सारा वातावरण भी बदलता जा रहा है, तो ये सभी ऐसे महान आत्माएं अपने जो भी विशेष शक्तियों की किरणें, सुख की किरणें, आनंद की किरणें, शांति की किरणें आदि आदि पवित्रता की किरणें फैला रहे हैं, उसके द्वारा हम दुनिया के आत्माओं से भी सुनते आ रहे हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य महान है। सुनते आ रहे हैं या नहीं, लग रहा है ना सबको आजकल? तो महान कार्य, पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोले तो बहुत दूर जाते थे, ब्रह्मा कुमारी नाम सुनने के लिए नहीं चाहते थे। कई कुछ कई लोग तो कुछ बोलते भी थे, गालियां भी देते होंगे, कुछ न कुछ तकलीफ भी देते थे, परंतु आजकल यहां तक तो हम सब जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक अच्छी संस्था है, सबको एक अच्छा मार्गदर्शन करने वाली संस्था है। तो ये वर्तमान समय पर सभी दुनिया की आत्माएं जान गई हैं, अथवा जिनको अभी तक इस संस्था के बारे में मालूम नहीं है वो आगे चल करके जरूर जानेंगे भी। तो ये केवल हम आत्माएं योग लगा रहे हैं तो उसके द्वारा हम प्रकंपन फैला रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बदल हो रहा है, अथवा टीवी से देखते हुए प्रेरणा ले रहे हैं तो इसलिए उनको अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा ये सूक्ष्म बात है, हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। तो हमारे जो महान विभूतियां, बाप दादा तो है ही, पिताश्री ब्रह्मा जी तो है ही, परंतु हमारी जो दादियां जैसे प्रकाशमणि दादी, दीदी वगैरह दादियां अव्यक्त हुए हैं, तो उनके द्वारा भी चारों ओर उस प्रकार से सबको वातावरण बन रहा है, उसके द्वारा प्रेरणा मिल रही है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझकर हमको भी अभी स्वयं उस प्रकार का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ आप सभी, हम सभी मिलकर के इस प्रकार का उनको फॉलो करने का आज से लेकर के दृढ़ संकल्प करेंगे। इस आशा के साथ मैं मेरे महावाक्यों को, माना बाप दादा के महावाक्यों को पूरा करती हूँ। ओम शांति। बाप दादा की प्रेरणा लेकर के बाप दादा की इच्छा को पूर्ण करेंगे ही हम भी आपके साथ इस बात के लिए शामिल है। आप सब शांत चित्त होकर के बैठकर इस बात को सुने समझे और ऐसे ही अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा लिए हैं और अभी दृढ़ संकल्प भी किए हैं। इस आशा के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हुए इन शब्दों को समाप्त करती हूँ। ओम शांति।